नमस्कार, यह आकाशवाणी है। अभी आप अनुज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। भारत आज शाम 7 बजे अरुणाचल प्रदेश की यूपी स्थित गोल्डन जुबली आउटडोर स्टेडियम में अंडर-23 ट्राई नेशन चैंपियनशिप 2026 के फाइनल में ताजिकिस्तान के साथ मुकाबला खेलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महावीर जयंती के अवसर पर गुजरात के कोवा में सम्राट संप्रति संग्रहालय का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि हिंसा और अनिश्चितता से जूझ रही दुनिया के लिए इस संग्रहालय का संदेश अत्यंत महत्वपूर्ण। प्रधानमंत्री ने गुजरात के साणत में कैंस सेमीकंडक्टर OSAT संयंत्र का उद्घाटन भी किया। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज ईटानगर में राज्य क्षतिपूर्ति वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण कैंपा की 6वीं शासकीय निकाय बैठक की अध्यक्षता की। पापुमपारे जिले की यूपिया स्थित जिला मजिस्ट्रेट द्वारा ड्राई डे घोषित किया गया है। यह आदेश असम विधानसभा चुनाव के मतदान और मतगणना के मद्देनजर जारी किया गया। अरुणाचल प्रदेश में जनगणना 2027 पहला चरण के तहत फील्ड ट्रेनर्स के लिए 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत हुई। बिहार के नालंदा जिले के शीतला अष्टमी मंदिर में भगदड़ में 8 महिला श्रद्धालुओं की मौत और दुबई तट पर ईरान के ड्रोन हमले में कुवैत के तेल टैंकर क्षतिग्रस्त। अब समाचार विस्तार से। भारत आज शाम 7 बजे अरुणाचल प्रदेश के यूपिया स्थित गोल्डन जुबली आउटडोर स्टेडियम में अंडर-23 ट्राई नेशन चैंपियनशिप 2026 के फाइनल में ताजिकिस्तान के साथ मुकाबला खेलेगा। इससे पहले गत 28 मार्च को खेले गए मुकाबले में भारतीय टीम ने भूटान को 5-0 से पराजित किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महावीर जयंती के अवसर पर गुजरात में गांधीनगर के कोबा पर सम्राट संप्रति संग्रहालय का उद्घाटन किया। यह संग्रहालय जैन इतिहास सम्राट संप्रति के जीवन, उनके शासन और अहिंसा के संदेश को समर्पित है। श्री मोदी ने कहा कि कोबा तीर्थ स्थल आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत है।
कोबा तीर्थ की स्थली आध्यात्मिक शांति से ओतप्रोत है। जिस स्थान की ऊर्जा ऐसी अलौकिक हो, वहाँ सृजन और सेवा ये अपने आप प्रस्फुटित और संचालित होते हैं। कोबा तीर्थ में कैसे अध्ययन, साधना और संयम की सतत परंपरा चली आ रही। यहाँ मूल्यों का संरक्षण होता है, संस्कारों को संबल मिलता है और ज्ञान का पोषण होता है। ये त्रिवेणी भारतीय सभ्यता का आधार है।
प्रधानमंत्री ने कहा है कि कोबा तीर्थ में मूल्यों का संरक्षण, सांस्कृतिक लोकाचार का सशक्तिकरण और ज्ञान का संवर्धन होता है। उन्होंने इसे 3 धाराओं, अध्ययन, आध्यात्मिक साधना और आत्म अनुशासन का संगम बताया। श्री मोदी ने कहा है कि ये भारत सभ्यता की आधारशिला है। प्रधानमंत्री ने इस संकल्पों में अपनाने और उनके संरक्षण पर बल दिया।
पहला संकल्प पानी बचाने का, दूसरा एक पेड़ माँ के नाम, तीसरा स्वच्छता का मिशन, चौथा वोकल फॉर लोकल, पांचवा देश दर्शन, छठा नेचुरल फार्मिंग को अपनाना, सातवा हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाना, आठवा योग और खेल को जीवन में लाना, नवा संकल्प है गरीबों की सहायता का संकल्प और 10वां संकल्प आप सभी ने स्वयं से जोड़ लिया है और वो है भारत की विरासत का संरक्षण।
विश्व की वर्तमान स्थिति का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा है कि संग्रहालय का संदेश पूरी मानवता के लिए महत्वपूर्ण है।
आज दुनिया में जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह विश्व अस्थिरता और अशांति के आग में झुलस रहा है, इस म्यूजियम की विरासत, इसका संदेश केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए बहुत अहम है। हमारा प्रयास होना चाहिए दुनिया के देशों से यहाँ आने वाले जिज्ञासु, स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स की संख्या और बढ़े। जो लोग यहाँ आए वो भारत की जैन धर्म की शिक्षाओं को विश्व के कोने कोने में पहुँचाए।
प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद के सानंद GIDC में स्थित कैन सेमीकंडक्टर संयंत्र का उद्घाटन किया। इसके साथ ही इस संयंत्र में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू हो गया है। इस संयंत्र में उन्नत इंटेलिजेंस पावर मॉड्यूल IPM का निर्माण किया जाएगा। ये भारत के सेमीकंडक्टर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज ईटानगर में राज्य क्षतिपूर्ति वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण कैंपा की 6वीं शासकीय निकाय की बैठक की अध्यक्षता की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार विकास और संरक्षण को साथ साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है, जो कि क्षतिपूर्ति वनीकरण कोष अधिनियम 2016 की भावना के अनुरूप है। उन्होंने राज्य कैंपा प्राधिकरण को सरकार के पूर्ण समर्थन देने की पुनः पुष्टि की है। अरुणाचल प्रदेश में पापुमपारे जिले के यूपिया स्थित जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा ड्राई डे घोषित किया गया है। यह आदेश असम विधानसभा चुनाव के मतदान दिवस आगामी 9 अप्रैल और मतगणना के दिन 4 मई के मद्देनजर जारी किया गया है। इन निर्धारित तिथियों पर पापुमपारे जिले के सभी शराब गोदाम, वेयरहाउस, दुकानें, होटल और रेस्टोरेंट में शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। उल्लंघन करने वाले के खिलाफ अरुणाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम 1993 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस बीच असम में सभी 126 विधानसभा सीटों के लिए मतदान 9 अप्रैल को एक ही चरण में किया जाएगा। वहीं असम, केरल और पुदुचेरी के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में होम वोटिंग प्रक्रिया जारी है, जो अगले महीने की 5 तारीख तक पूरी कर ली जाएगी। सरकार ने कल से शुरू हो रही जनगणना 2027 के पहले चरण के लिए 33 प्रश्न अधिसूचित किए हैं। विश्व में यह सबसे बड़ी जनगणना 2 चरणों में कराई जाएगी। पहली बार जनगणना डिजिटल रूप में कराई जाएगी। स्व जनगणना का विकल्प भी उपलब्ध होगा। जनगणना 2027 के तरीकों को लेकर महापंजकीय और जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण ने आकाशवाणी के पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में बताया है कि यह जनगणना पिछली जनगणना से अलग है। उन्होंने विदेश में रहने वाले भारतीयों को इस जनगणना में भागीदारी करने के तरीके को भी स्पष्ट किया। इधर अरुणाचल प्रदेश में जनगणना 2027 पहला चरण के तहत फील्ड ट्रेनर्स के लिए 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है। ये प्रशिक्षण 30 मार्च से 1 अप्रैल तक अपर सियांग, लोअर सियांग और ईस्ट सियांग जिलों में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें हाउस लिस्टिंग और हाउस सेंसस HLO पर ध्यान दिया जा रहा है। इस कार्यक्रम का आयोजन जनगणना संचालन निदेशालय अरुणाचल प्रदेश और गृह मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। अपने संबोधन में ADC मुख्यालय पविका लगो ने जनगणना 2027 के सफल संचालन में प्रशिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। इसी क्रम में तवांग जिले में भी उपायुक्त कार्यालय कॉन्फ्रेंस हॉल में इसी तरह का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। तवांग के उपायुक्त नामग्याल आंगमो ने सभी प्रशिक्षुओं से अपनी जिम्मेदारियों का ईमानदारी से निर्वहन करने का आग्रह किया और कहा कि त्रुटि रहित जनगणना आंकड़े देश की योजना और विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। बिहार में आज सुबह नालंदा जिले के बिहार शरीफ स्थित मगरा सीतालक्ष्मी मंदिर में धार्मिक अनुष्ठान के दौरान मची भगदड़ में 8 महिला श्रद्धालुओं की मौत हो गई और कई लोग घायल हुए हैं। घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ये अफवाह के कारण भीड़ में अफरा तफरी मच गई थी। बचाव अभियान जारी है और मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका भी है। असम में 85 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग मतदाताओं और दिव्यांगजनों के लिए घर से मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई है। असम के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में यह प्रक्रिया जारी है। असम में एक ही चरण में आगामी 9 अप्रैल को मतदान होगा।
2023 के परिसमन के दौरान भवानीपुर और सौरभोग सीटों के कुछ हिस्सों को मिलाकर यह निर्वाचन क्षेत्र को गठन किया गया था और यह बरपेटा और बजाली जिले में फैला हुआ है। इस विधानसभा चुनाव में इस निर्वाचन क्षेत्र से 5 उम्मीदवार मैदान में है। CPIM ने परिसीमित सौरभोग के विधायक मनोरंजन तालुकदार को और भाजपा ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री रंजित कुमार दास को उम्मीदवार बनाया है। रंजित कुमार दास बजाली निर्वाचन क्षेत्र से प्रतिनिधि है। फरहत अली अखिल भारतीय संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चे के उम्मीदवार है। शुक्र और FA अहमद निर्दलीय उम्मीदवार है। यहाँ 270 मतदान केंद्र है, जिनमें से 30 का नेतृत्व महिलाएं कर रही है। अमीनुल हक सुद्दार, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
कोलकाता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में निर्वाचन आयोग द्वारा बड़ी संख्या में प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के तबादले के विरुद्ध तृणमूल कांग्रेस नेता की 2 जनहित याचिकाओं को खारिज कर दिया है। पार्टी के लोकसभा सदस्य कल्याण बनर्जी ने याचिकाकर्ता के वकील के रूप में इस मामले में पैरवी की है। दुबई तट पर ईरान के ड्रोन हमले में कुवैत का तेल टैंकर क्षतिग्रस्त हो गया है। इस हमले से व्यापक संघर्ष और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में व्यवधान की आशंका बढ़ गई है। कुवैत के ध्वज वाले टैंकर अल सलमी में लगभग 20 लाख बैरल कच्चा तेल भरा हुआ था। हमले के बाद उसमें आग लग गई। दुबई के अधिकारियों ने बताया है कि आग पर काबू पा लिया गया है और चालक दल के सभी 24 सदस्य सुरक्षित है। कुवैत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ने आगाह किया है कि क्षति के कारण तेल रिसाव हो सकता है। यह घटना अमेरिका और इसराइल के ईरान पर किए गए हमलों के बाद बढ़ते तनाव के बीच हुई है। दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 का समापन आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में हो रहा है। एक सप्ताह तक चले इस महोत्सव में दुनिया भर की 125 से अधिक फिल्में दिखाई गई। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।